नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जया भारती। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के पहले सत्र को संबोधित किया। श्री मोदी ने वैश्विक विकास के मानदंडों और प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार तथा समावेशी और सतत विकास का आह्वान किया। G20 शिखर सम्मेलन में जलवायु संकट सहित वैश्विक चुनौतियों पर संयुक्त घोषणा पत्र अपनाया गया। नाइजीरिया के मध्य इलाके में एक कैथोलिक स्कूल में हथियारबंद लड़ाकों ने लगभग 300 विद्यार्थियों का अपहरण किया। वियतनाम के मध्य क्षेत्र में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से मरने वालों की संख्या 55 हुई। और टोक्यो डेफलिंपिक्स में महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में भारतीय निशानेबाज माहित संधू ने स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में आज से G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12वीं बार G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन के पहले सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने भारत की सभ्यतागत ज्ञान परंपरा पर आधारित समग्र मानववाद की धारणा का उल्लेख किया, जो विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त करती है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में 4 प्रमुख प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की परिकल्पना को मूर्त रूप देते हुए अपने संबोधन में 4 प्रमुख प्रस्ताव रखे। श्री मोदी ने G20 के तहत एक वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार स्थापित करने और G20 अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर पहल का प्रस्ताव रखा। श्री मोदी ने G20 देशों को प्रशिक्षित चिकित्सीय विशेषज्ञों की टीम बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। नशीले पदार्थ की बढ़ती चुनौती से निपटने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने ड्रग टेरर नेक्सस का मुकाबला करने के लिए G20 पहल का भी प्रस्ताव रखा। इस बीच G20 दक्षिण अफ्रीका शिखर सम्मेलन घोषणा पत्र भी अपनाया गया। नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। जोहानसबर्ग से असुनियों की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
सम्मेलन में G20 के नेताओं ने कहा कि क्रिटिकल मिनरल्स यानी महत्वपूर्ण खनिजों की मांग में वृद्धि होगी। उनका मानना था कि अब तक इसके लाभों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया है। इन नेताओं ने G20 क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क का स्वागत किया। G20 देशों ने ऐसी वित्तीय नीतियों को अपनाने की प्रतिबद्धता दोहराई जो सभी के लिए आर्थिक समृद्धि में योगदान दें। G20 शिखर सम्मेलन में नेताओं ने आज अमेरिका की आपत्ति के बावजूद सर्वसम्मति से संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाया। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसमें कहा गया है कि एकजुटता, समानता और निरंतरता समावेशी वैश्विक विकास के आवश्यक स्तंभ हैं।
39 पृष्ठों के इस दस्तावेज में ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु कार्रवाई और आपदा से बचाव को प्रमुखता दी गई है। इसमें बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, संघर्षों और बढ़ती असमानता को आर्थिक स्थिरता के लिए प्रमुख खतरा बताया गया है। घोषणा पत्र में बहुपक्षीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया गया है, जिसमें सीमाई विवादों में शामिल देशों का परोक्ष रिपीट जिसमें सीमाई विवादों में शामिल देशों का परोक्ष रूप से उल्लेख है। घोषणा पत्र में विकासशील देशों में कर्ज संबंधी बाधाओं का भी उल्लेख किया गया है, जो बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में निवेश के रास्ते में बाधा बनती है। घोषणा में G20 की बहुपक्षवाद और सर्वसम्मति पर आधारित सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री रोनाल्ड लामोवा ने कहा कि शेरपा स्तर पर वार्ताएं पहले ही पूरी हो चुकी थी, जिससे नेताओं को बिना किसी देरी के घोषणा पत्र को मंजूरी देने में सुविधा हुई। विश्व दर्पण के लिए शक्ति सिंह।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज G20 शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और कनाडा के प्रधानमंत्री माइक कार्नी से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया कनाडा भारत टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन साझेदारी की घोषणा करके उन्हें प्रसन्नता हुई है। सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टार्मर से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष भारत ब्रिटेन साझेदारी में नई ऊर्जा आई है और दोनों देश कई क्षेत्रों में इसे आगे बढ़ाते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी सार्थक बातचीत की। उन्होंने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा से मुलाकात पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी 2025 का 56वां संस्करण आज तीसरे दिन भी सिनेमा प्रेमियों को रोमांचित करता रहा। एक रिपोर्ट।
एशिया के इस सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव का आज तीसरा दिन है। सुबह से ही फिल्मों की स्क्रीनिंग, मास्टर क्लास और इंटरव्यू का सिलसिला जारी रहा। कई बड़ी फिल्मी हस्तियों और नए कलाकारों के साथ विशेष संवाद तथा मीडिया इंटरेक्शन कार्यक्रम सिने प्रेमियों को आकर्षित कर रहे हैं। फिल्म पेस्कादोर के निर्देशक हैरी डोमिनिको रॉसी ने बताया कि उनकी ये फिल्म निजी जीवन की गहरी अनुभूतियों से प्रेरित है और इसे बनाना कई स्तरों पर चुनौतीपूर्ण रहा था। ये फिल्म अब वैश्विक स्तर पर सराहना बटोर रही है। वरिष्ठ अभिनेता अनुपम खेर ने अपनी फिल्म तन्वी द ग्रेट पर अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि ये फिल्म कभी हार ना मानने के आदर्श वाक्य से प्रेरित है, जिसने हमेशा उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को दिशा दी है। इसके बाद मस्किटोस फिल्म के निर्देशक वालेंटाइना बर्तानी और निकोल बर्तानी ने बताया कि ये कहानी एक संवेदनशील, भावनात्मक तथा गहन विषय को बहुत ही सूक्ष्मता के साथ प्रस्तुत करती है और इसी वजह से इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर काफी सराहना मिल रही है। फिल्मोत्सव में आज सुबह से लगभग 50 फिल्मों की स्क्रीनिंग हो रही है, जिससे ये दिन दर्शकों के लिए बेहद खास बन गया है। आदर्श और सायरा के साथ निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा।
मध्य नाइजीरिया के एक कैथोलिक स्कूल से 300 से ज्यादा बच्चों और कर्मचारियों का अपहरण कर लिया गया। नाइजीरिया के ईसाई संघ ने बताया कि कल नाइजर राज्य के पापरे स्थित सेंट मैरी स्कूल से 303 विद्यार्थियों और 12 शिक्षकों को अगवा किया गया। संगठन ने बताया कि जांच के बाद इन आंकड़ों में वृद्धि हुई है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद HRC ने अपने सदस्य फरवा असगर को और पत्रकार अलीफिया सोहेल की अवैध गिरफ्तारी और नजरबंदी की कड़ी निंदा की है। संस्था के अनुसार यह गिरफ्तारी कल कराची प्रेस क्लब के बाहर देश के 27वें संविधान संशोधन के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई। वियतनाम के मध्य क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ से मरने वालों की संख्या 55 हो गई है। वियतनाम आपदा और बांध प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि 13 लोग अभी भी लापता हैं। बाढ़ ने लगभग 80,000 हेक्टेयर में लगे चावल और अन्य फसलों को भी जलमग्न कर दिया, जबकि 32 लाख से ज्यादा मुर्गियां और मवेशी मारे गए या बह गए। 28,400 से अधिक घर अभी भी जलमग्न है, जबकि 946 क्षतिग्रस्त हो गए हैं। प्राधिकरण के अनुसार लगभग 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। और अब खेल खबर। टोक्यो डेफ ओलंपिक्स में निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की माहित संधू ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में माहित ने 2 स्वर्ण पदक के साथ कुल 4 पदक अपने नाम किए हैं। दक्षिण कोरिया की डेन जियोंग ने रजत और हंगरी की मीरा जुजाना ने कांस्य पदक जीता। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल पूरा होने तक दक्षिण अफ्रीका ने 6 विकेट पर 247 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के ट्रिस्टन स्टब्स ने सर्वाधिक 49 रन की पारी खेली। वहीं भारत की ओर से कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए। श्रृंखला में भारत 1-0 से पीछे है। ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में लक्ष्य सेन ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में एक जगह बनाई। सेमीफाइनल में आज लक्ष्य ने चीनी ताइपे के चाउ टीएन चेन को करीबी मुकाबले में हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के पहले सत्र को संबोधित किया। श्री मोदी ने वैश्विक विकास के मानदंडों और प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार तथा समावेशी और सतत विकास का आह्वान किया। G20 शिखर सम्मेलन में जलवायु संकट सहित वैश्विक चुनौतियों पर संयुक्त घोषणा पत्र अपनाया गया। नाइजीरिया के मध्य इलाके में एक कैथोलिक स्कूल में हथियारबंद लड़ाकों ने लगभग 300 विद्यार्थियों का अपहरण किया। वियतनाम के मध्य क्षेत्र में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से मरने वालों की संख्या 55 हुई। और टोक्यो डेफ ओलंपिक्स में महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में भारतीय निशानेबाज माहित संधू ने स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।